काम मैंने पहले बताया था कि पवित्र आत्मा का कार्य जो प्रेरितों के द्वारा संपन्न किया गया और वो प्रेरितों के द्वारा सुसमाचार का विस्तार है और उसके साथ साथ कलीसियाओं की स्थापना है। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम पिछली बार देख रहे थे कि 20 अध्याय के बाद से अब पौलुस अपनी सेवा को समाप्त करने पर है, उसके बाद जो सुसमाचार प्रचार का कार्य है, कलीसिया की स्थापना है और दूसरी दिशा की ओर जा रहा है, कलीसिया स्थापना हो गई है, कुछ शिक्षाएं जो दे रहा है। अब पूरी रीति से पौलुस के जीवन का संघर्ष या उसके बारे में हम देख रहे हैं। पिछली बार जब 22 अध्याय में देखा था तो हमने देखा था कि पौलुस किस प्रकार से अपनी साक्षी दे रहा है, गवाही दे रहा है और कैसे मुझे और आपको सीखना है कि मसीह गवाही साक्षी किस प्रकार से है। और पिछली बार हमने इन कुछ बातों को देखा था जो पौलुस के जीवन से, पौलुस ने 22 अध्याय में प्रेतों के 26 अध्याय में वही बात को दोहराया है, उसके साथ उसी चीज को उसने कुरिन्थियों में भी दोहराया है, उसी चीज को उसने गलतियों में भी दोहराया है। बार बार वो अपने जीवन में प्रभु की उस कार्य के जो कार्य परमेश्वर उसके जीवन में किया है उसकी साक्षी वो देता है बार बार। और ये सच है, एक मसीह जीवन गवाही का जीवन है, एक मसीह जीवन गवाही का जीवन, गवाही उसके जीवन के द्वारा, गवाही उसके शब्दों के द्वारा। जहां कहीं भी प्रभु ने मुझे रखा है, मुझे और आपको रखा है, हमारे शब्द गवाही के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, हमारा जीवन गवाही के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, इस बात को हमें देखना है। और ये सच है और तभी हम प्रभु के सुसमाचार को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आज हम 23 अध्याय में आगे बढ़ेंगे, पिछले 22 अध्याय तक हम देखे था और हमने इस बात को देखा था जब वो साक्षी दे रहा सब कुछ कर रहा बता रहा है तो उसको किस रीति से उस पर दोषारोपण लगाया जा रहा है, किस रीति से उसको कहा जा रहा है और खास तौर से बार बार उसको कहा जाता था कि पौलुस जो है व्यवस्था का विरोध करता है। पौलुस ने व्यवस्था का विरोध नहीं किया, पौलुस ने व्यवस्था का विरोध नहीं किया, लेकिन पौलुस ने यह सिखाने का प्रयास किया है कि हमारा छुटकारा या हमारा उद्धार व्यवस्था से नहीं है लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है। और उसने कहा कि कोई भी जन व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जाता, हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पे। उसको उसने बार बार समझाने का प्रयास किया, सिखाने का प्रयास किया। फिर कुछ लोगों का ये था कहना कि ये वहां के जो मंदिर है उसका वो अपमान करता, उसने मंदिर का कभी अपमान नहीं करा, मंदिर का अपमान नहीं करा, वो उसका अन्य जातियों को मंदिर में ले जाता है, वो ऐसा नहीं था, उससे कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया। अभी भी हम आज उसी स्थल में हम जा देखेंगे और बार बार उसको दोष लगाना चाहा लेकिन वो दोष साबित नहीं कर पाया। और इस रीति परंतु सुसमाचार मुख्य कारण था, उसका दर्शन, उसका बोझ, उसने जीवन को पाया था, उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया था। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम 22 अध्याय के 30 पद आरंभ करेंगे, 22 अध्याय के 30 पद से। परंतु दूसरे दिन ये निश्चय करने के लिए कि यहूदियों ने क्यों इस पर अभियोग लगाया है, उसने उसके बंधन खोल दिए और मुख्य याजकों तथा महासभा में को एकत्रित होने का आदेश दिया और पौलुस को ले जाकर के उनके सामने खड़ा कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, वहां पर रोमी शासन है और रोमी शासन के बीच में ये यहूदियों का मत वहां है, यहूदियों का मंदिर भी है, यहूदी लोगों को स्वतंत्रता है कि उसके द्वारा वो आराधना कर सके, मंदिर में जा सके, अपने पर्वों को मान सके। रोमी शासन ने इस बात की स्वतंत्रता दी है। आज भी जो आप देखेंगे कुछ और बात को भी देखना चाहेंगे। तो अब इससे पहले जब उसने कहा मैं तो रोमी हूं, तब एकदम से रोमी चौंका, रही अगर ये रोमी है तो फिर हमारे पास कोई इसका उसको दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। और तब उसको महासभा के सामने लाते हैं। तो 23 अध्याय से पौलुस महासभा के सामने आता है। अगर हम इस बात को देखें तो 23 अध्याय जो मुख्य अध्याय है वो ये है कि परमेश्वर की प्रभुता पौलुस के जीवन और सेवा में। उसका मुख्य 23 अध्याय का जो मुख्य विषय है या थीम है वो ये कहते हैं परमेश्वर की प्रभुता पौलुस के जीवन में और उसके सेवा में। पौलुस ने निरंतर इस बात को ध्यान रखा था कि परमेश्वर की प्रभुता को वो अपने जीवन बनाए रखे किसी परिस्थिति में, क्योंकि वो परमेश्वर को जान सका। और जब इसको बात देखते हैं तो तीन मुख्य भाग है इस 23 अध्याय के। पहला भाग पहले पद से लेकर के 11 पद तक पौलुस महासभा के समक्ष भाषण दे रहा है। उस भाषण में दो बातें हैं, परमेश्वर द्वारा पौलुस को बुद्धि का दिया जाना, परमेश्वर पौलुस को बुद्धि देता है किस प्रकार से महासभा में वो बातचीत करे, परमेश्वर द्वारा पौलुस को प्रतिज्ञा में प्रोत्साहित किया जाता है 11 पद। तो दो मुख्य बात है, पौलुस महासभा के सामने है, वो भाषण दे रहा है, अपने बारे में बता रहा है, और अब बात करते हुए परमेश्वर उसको बुद्धि दे रहा है और परमेश्वर उसको प्रोत्साहित भी कर रहा है। दूसरा भाग 12 पद से लेकर के 22 पद तक पौलुस को यहूदियों द्वारा घात करने की योजना है, उसको नाश करने की, उसको मारने की योजना है, ये योजना बनाई जा रही है। लेकिन क्या हो रहा है, इस योजना में परमेश्वर द्वारा पौलुस का बचाव है, परमेश्वर किस प्रकार से सारी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में करा है। ध्यान दीजिए, प्रेरितों काम का मुख्य हीरो पौलुस और पतरस नहीं है, प्रेरितों काम की का मुख्य हीरो पतरस और पौलुस नहीं है, लेकिन प्रेरितों काम की पुस्तक का या पूरी बाइबल का जो मुख्य हीरो है वो जो है वो परमेश्वर है। परमेश्वर किस प्रकार से सारी परिस्थितियों को निरंतर कर रहा है, परमेश्वर किस प्रकार से जा रहा है। और आज मुझे और आपको भी देखना चाहिए, अगर हम परमेश्वर के निकटता में रहते हैं तो परमेश्वर सच में हमारे जीवन का हीरो होना है। कई बार हम जीवन में उतार चढ़ाव में जाते हैं, निराशा में आते हैं, संघर्षों में आते हैं, लेकिन बार बार हमें लौट करके परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर हमारा सब कुछ है, मुखिया है। तो परमेश्वर किस प्रकार से पौलुस का बचाव करता है, परमेश्वर पौलुस की संबंधी को उपयोग कर रहा है, एक संबंधी है। कई बार आप पौलुस के बारे में उसके परिवार के बारे में ज्यादा नहीं आते, लेकिन यहाँ पर एक संबंधी को देख, अर्थात उसकी बहन का बेटा है, इसका मतलब पौलुस का अच्छा परिवार था, उसका बहन है, उसका एक बेटा है, किस प्रकार से परमेश्वर उसको उपयोग कर रहा है पौलुस के बचाव में। तीसरा भाग 23 पद से लेकर 35 पद तक पौलुस राजपाल फेलिस के समक्ष उपस्थित होता है, परमेश्वर द्वारा पौलुस की सुरक्षा किस प्रकार से फेलिक्स को उपयोग किया जाता है कि उसकी सुरक्षा की जा सके। तब उसके बाद परमेश्वर पौलुस को उस स्थान से वहां से हटवा देता है ताकि उसका घात ना हो। तो परमेश्वर सारे पीछों के पीछे किस प्रकार से नियंत्रण कर रहा है। लेकिन जब हम 23 पद के पहले पद से देखते हैं तो कुछ बातों को देखना चाहेंगे, या किस प्रकार से पौलुस आराम करता है। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए कहा, भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के सम्मुख पूर्णता खरे विवेक से जीवन बिताया है। वो कह रहा, भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के सम्मुख पूर्णता खरे विवेक से जीवन बिताया, आज तक, शुरू से लेकर आज तक। हम जानते हैं उसके बारे में, पढ़ते हैं, पहले देखा किस रीति से उसका जीवन था, उसने किस प्रकार से गमलियल के चरणों में बैठकर परमेश्वर की व्यवस्था को सीखा था, वचन को सीखा था। जब वो व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय व्यवस्था के मानने में उसको धुन खाई हुई थी और व्यवस्था का पूरा पालन करता था, इसीलिए वो व्यवस्था को मानने के कारण ही वो जो लोग व्यवस्था को नहीं मानते थे उनको बंदी गृह में डाल रहा था, अर्थात मसीह को सता रहा था। तो उसके जीवन में उस समय भी उसका हृदय खरा था, शुद्ध था, कि वो जो कर रहा है परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार उसके अनुसार कर रहा है परमेश्वर, क्योंकि अभी तक उसने परमेश्वर को जाना नहीं था, अभी तक उसने परमेश्वर की आवाज को सुना नहीं था, अभी तक परमेश्वर का दर्शन उसको मिला नहीं था। लेकिन जैसे उसका दर्शन मिला और परमेश्वर से बात की, पौलुस के जीवन बदला, पौलुस का सोच बदला, पौलुस का मन बदला, पौलुस के बारे में सब कुछ बदला। अब इस परिवर्तन ने पौलुस को बदलने का, अब उसका जीवन इस प्रकार से अभी भी है कि जो वो जीवन व्यतीत कर रहा है वो खराई और सच्चाई से व्यतीत कर रहा है। मेरे प्रिय प्रश्न, मेरा और आपका जीवन कितना खराई और सत्यता से व्यतीत होता है, अपने कार्यों में, अपने बातचीतों में, अपने व्यवहार में, अपने लेन देन में? वो कह रहा खराई से। अभी पिछले दिनों में मैं किताब पढ़ रहा था और वो किताब एंड्रू डेविड के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने कॉन्शियस बेस विवेक के बारे में लिखा है। उन्होंने बहुत अच्छा उस पुस्तक में बहुत विस्तार के साथ विवेक के बारे में दिया गया, जैसे मैंने कहा 30 रेफरेंसेस उसमें दिए, बहुत विस्तार से। अब मुझे बहुत कुछ उससे सीखने को मिला, जानने को मिला। और वो इस पुस्तक में बहुत सुंदर रीति से कहते हैं कि विवेक जो है वो एक चेतना है। क्या है ये? मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, उसमें असाध रोग लिखा। मन अलग है, विवेक अलग है। मन कई बार धोखा दे सकता है, यहाँ पर एक पैन पड़ा है, कोई आया, अरे पॉइंट बहुत अच्छा उठा के गिर मेरे, मन क्या कहेगा, धोखा देगा, अरे पड़ा था तुमने उठा लिया कोई बात नहीं, ढूंढ ले गए। विवेक क्या कहेगा, नहीं तुमने पैन उठाया, तुम जाके पूछो किसका पैन, पूछो उसको देगा। मन क्या कहा, कोई बात रख लिया कोई बात नहीं। मन तो मन और विवेक में फर्क है, और परमेश्वर का वचन बहुत कुछ विवेक के बारे में, और मेरा और आपका विवेक शुद्ध होना, मेरे और आपके विवेक को जागृत होना, मेरे और आपके विवेक को सचेत होना, तो वो चेतना वो जागृत जिसकी जब हम बातों को सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ डीपली कोई चीज आती है, और कई बार हम विवेक की आवाज को दबा देते हैं, और कई बार अच्छा विवेक भी बुरा बन जाता है। मैंने कहा ये एक ऐसा विषय जिस पर अलग स्टडी की जाए, अध्ययन किया जाए तो बहुत अच्छा हो, लेकिन इतना समय नहीं, पर मुझे आगे बढ़ना है। पर थोड़ा सत्य बात कि इस क्यों कह रहा है कि मैंने खरे विवेक के साथ जीवन व्यतीत किया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रार्थना करना चाहिए, मुझे और आपको अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे और आपको ये प्रयास करना चाहिए कि हम एक अच्छे खरे विवेक के साथ जीवन को व्यतीत कर सके, चाहे वो हमारा लेने देने का संबंध हो, चाहे हमारा बातचीत का हो, चाहे हमारे निर्णय का हो, हमें पक्षपात के साथ नहीं, सच्चाई और खराई के साथ इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए, और कई बार लोग ऐसा नहीं करने पाते। और मेरे प्रियो, खराब विवेक मनुष्य को दृढ़ बनाता है, कई बार कठिनाई में होकर चलना पड़ता है, कई बार समस्याओं में होकर जाना पड़ता है, लेकिन एक खराब विवेक मनुष्य को खड़ा करता है। और मेरे प्रियो, कहीं भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने लिए, पर्सनल, और ये मांगना चाहिए प्रभु हमारा विवेक ऐसा खराब बन सके, ये सच है। तो जैसे मैंने कहा, चाहे वो व्यवस्था का पालन कर रहा था चाहे नहीं कर रहा था, उस समय से लेकर को कह रहा मैं आरंभ से। अब क्या होता आगे चल के, तब हनन्याह जो था महाजग में खड़ा हुआ है, उससे कोई ऐसी बुरी बात नहीं कही, उसे सही बात कही, उसने कहा था मैं खराई के साथ अपने जीवन को काम कर रहा हूं। लेकिन ये जो हने महाजक है, उसने क्या करा, ने पास खड़े लोगों को उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। अरे ये अपने खरे विवेक की बात करा, मारो इसको, क्योंकि खरे बात की बात को सुनने के लिए तत्पर और तैयार नहीं। मेरे पे ही मेरे और आपके साथ आज कई बार होता है, हम लोग खरी बात सुनना नहीं चाहते। पौलुस को वो कह रहा है कि पौलुस को थप्पड़ मारो, पौलुस क्रोधित लिखा क्या हुआ, पौलुस ने उससे कहा हे जुना पुती हुई भीत, तुझे परमेश्वर मारेगा, क्या तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने के लिए यहां बैठा है। अब क्या कह रहा है, पौलुस व्यवस्था को जानता है, और पौलुस व्यवस्था का सहारा लेकर कह रहा है क्या हे जुनी जुना पुती हुई भीत, तुझे परमेश्वर मारेगा, क्या तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने के लिए यहां बैठा है, और फिर व्यवस्था के ही विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। क्योंकि व्यवस्था क्या कह रही, जब तक तू किसी को दोष को ना समझ ले, दोष को ना जान ले, तू किसी प्रकार से उसका कोई भी न्याय नहीं करना, कोई भी आज्ञा। अभी तक पौलुस पर कोई दोष नहीं गया, लेकिन फिर भी उसको मारने के लिए करा। पौलुस ने कोई गलत बात नहीं की, पौलुस ने मैं एक सच्चे विवेक के साथ जीवन को व्यतीत कर रहा हूं, करे उसको सुनना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं सुना। देखा अतः वो कहता है चार पद में, परंतु पास खड़े लोगों ने कहा क्या तू परमेश्वर के महाजग को बुरा भला कहता है, क्या तू परमेश्वर। अब यहां पर पौलुस को नहीं मानता ये कौन है, और पौलुस ने इस बात को परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात को कह दिया। लेकिन जैसे उसको मालूम चला, वो कहता है कि तू पांचवें पद में, इस पर पौलुस ने कहा भाइयों मुझे नहीं मानता है कि महाजग है, और वो जानता है क्योंकि व्यवस्था में क्या लिखा है, व्यवस्था में साफ लिखा है, क्योंकि लिखा है तू अपने लोगों के शासक को बुरा ना कहना, तू अपने लोगों के शासक को बुरा ना कहना। मेरे प्रियो ये बात को जानना है, हम अपने देश में कहीं भी है, देश में ऑफिस में कहीं भी है, कई बार हमारे अधिकारी, मान लीजिए हमारे बॉस है जो सुपरिटेंडेंट है शायद, या हमारा सुपरवाइजर, उसका सुपरवाइजर खराब हो, लेकिन हम सुपरवाइजर खराब है इसलिए उसका अनादर नहीं करते, अगर हम उसके पद का हमें सम्मान करना, तो उसके पद के अनुसार क्योंकि सुपरवाइजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई देश के नेता है, हमारा ग्राम प्रधान है, प्रांत बहुत खराब है, लेकिन चूंकि ग्राम प्रधान है हम इसलिए उसका सम्मान कर, तो उसके नाम के अनुसार नहीं लेकिन उसके पद के अनुसार। हमेशा उस बात को ध्यान, सम्मान जो दिया था पद पे दिया था, नाम पे नहीं दिया। और आज हम इस बात को चूकते हैं, और परमेश्वर का वचन बार बार इस बात को सिखाता, शुरू से इस बात को कई सारे रेफरेंस हैं, जो समय नहीं जो मैं उनमें जाऊं, लेकिन बार बार इस बात को दिखाता कि हमें अगर आप निर्गमन में जाएं, निर्गमन में उसके 22:28 पद में साफ लिखा है किस प्रकार से तुम अपने शासकों का आदर करना। तो पौलुस को भी नहीं मालूम था, जैसे उसको मालूम चला वो एकदम से कहता मुझे नहीं मालूम, क्योंकि व्यवस्था इस बात को सिखाती है, वचन इस बात को सिखाता है, और जो वचन सिखाती है, जो व्यवस्था सिखाती है, उसको मैं पालन करने के लिए तैयार हूँ। रोमियो 13, हम अक्सर जब 26 जनवरी होती है या 15 अगस्त होता है, झंडा रोहण हम लोग जब भी करते हैं, हम अक्सर जब हमारा यूथ कैंप चलता रहता है, हम लोगों के साथ झंडा रोहण करते हैं, तो जब झंडा रोहण करते हैं मैं अक्सर इस रोमियो की 13 अध्याय को पढ़ता हूँ, और रोमियो 13 अध्याय में पहले से लेकर 7 पद तक ये स्पष्ट है किस प्रकार से हमें अपने शासकों का, अपने अधिकारियों का सम्मान करना है। नियमों का समय, अभी कोरोना का समय है, जो नियम सरकार बनाएंगे हम उसका पालन करेंगे। सो हम देश के हो, अरे हमारे मंत्री तो फलाने हैं, अरे वो ऐसे नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो जैसे भी हो लेकिन जो पद के अनुसार वो अधिकार रखते हैं, हम उनका सम्मान करते हुए उन नियमों का पालन करते हैं। ये हमेशा ध्यान, किसी भी कार्य में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी है, ऑफिस में, ये हमेशा ध्यान। मैं अक्सर अपना एक उदाहरण देता हूँ कि जब मैं एचएल में काम करता था और उस समय एक सुपरवाइजर पर मैं क्रोधित हो गया था, मेरे सुपरिटेंडेंट वो खिड़की बहुत बड़ा शीशे का लगा था, उससे वो देखते रहते थे, तो ये सुपरवाइजर ने जाके शिकायत की। जब मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे बुलाया, सुपरिटेंडेंट मिस्टर गुप्ता थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने एक बात कही कि रॉली यू आर क्रिश्चियन, तुम मसीह हो, मेरा सिर झुक गया। उनका कहना करता ठीक है, मैं जानता हूँ कि सुपरवाइजर गलत कर रहा है, लेकिन तुम मसीह, मसीह से आप अलग अपेक्षा की जाती है। उसके बाद से मैं बहुत सादा, कभी नहीं भूलता जीवन, कभी नहीं भूलता। हमें पद का सम्मान करना है ये, और पौलुस यही कर रहा, पौलुस यही कर रहा, पौलुस व्यवस्था का, वचन का आदर का इसीलिए कह रहा है कि मैंने खरे मन से ऐसा किया, इसलिए वो कह रहा है मैंने खरे मन से कैसे किया। तब आगे चल करके हम देखते हैं अब किस प्रकार से 6 पद से लेकर 10 पद तक पौलुस बहुत ही बुद्धिमानिता के साथ इन सारी बातों बात करता है। 6 पद, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर लोग हैं जो उस पर दोष लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 6 पद में जब पौलुस ने देखा कि एक दल सदुकियों का है और दूसरा फरीसियों का, तो महासभा में पुकार कर कहने लगा, भाइयों मैं फरीसी हूँ और फरीसियों के वंश का, सच में झूठे बोला। अगर आप पढ़ के देखें, वो रोमी शासन में था, रोमी राज में उसका जन्म हुआ था, इसलिए अपने आप को रोमी बताता है, जन्म से नागरिकता मिलती थी, या तो जन्म के द्वारा मिलती थी या पैसे द्वारा मिलती थी, समय ही था, और उसने उसके अनुसार करा था पूरा अपने बताओ। कहता मैं फरीसी हूँ, कहा फरीसी हूँ, महासभा पुकार करके मैं उनके वंश का हूँ, मृतकों की आशा और पुनरुत्थान के कारण ही मेरा न्याय हो रहा है। अब क्या है, अब ये दो अलग अलग मत के लोग, दो सदूकी और फरीसी। सदूकी क्या कहते थे, सदूकी ये मानते थे कि ना तो पुनरुत्थान है, ना सरदूत है, ना कोई आत्मा है, परंतु फरीसी सबके बाद, फरीसी मानते थे कि न्याय होगा, फरीसी मानते थे कि सरदूत है, फरीसी मानते थे कि पुनरुत्थान है, फरीसी सब कुछ मानते थे, लेकिन सदूकी लोग नहीं मानते। और इन दो अलग अलग के बीच में अब पौलुस खड़ा हुआ है, पौलुस खड़ा हुआ, लेकिन पौलुस पुनरुत्थान को भी मानता था परमेश्वर के वचन के अनुसार, पौलुस सरदूतों को भी मानता था परमेश्वर के वचन के अनुसार, और इसलिए उसने कहा कि मेरा यहाँ पर इस प्रकार से न्याय हो रहा है क्योंकि वे। और तब ये दोनों समूह के लोग क्या हुआ, तब बड़ा हल्ला मचा, फरीसी दल के कुछ शास्त्री उठ खड़े हुए और गरम बहस करने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते, यदि किसी आत्मा या स्वर्गदूत ने इसे बातें की तो फिर क्या है। पौलुस, परमेश्वर किस प्रकार से पौलुस को बुद्धि देता है और वो परिस्थिति में किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखते हुए, परमेश्वर के नियमों को ध्यान में रखते हुए वो इस बात को, इस बातचीत को कर रहा है। क्या हो रहा है, पौलुस ने कहीं झूठ नहीं बोला, अभी पौलुस पर ये लोग अभी अभियोग लगा नहीं सके। अब यही दोनों ग्रुप, दोनों समूह आपस में मिल गए और उनमें मतभेद और अधिक बढ़ गया। पौलुस खड़ा हुआ था मेरे पे, लेकिन पौलुस ने अपने विश्वास को प्रकट किया है। ठीक है, फरीसी केवल ज्ञान रखते थे लेकिन बहुत सारी चीजों को पालन नहीं करते। पौलुस ज्ञान के साथ साथ पालन करने वाला था। पौलुस जानता था कि पुनरुत्थान है, मरने के बाद हमारा पुनरुत्थान होगा और प्रभु हमें अपने साथ ले जाएगा। उसने थिस्सलुनीके की पत्री में बहुत स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या की है, लिखा हुआ है, और इसलिए वो उस चीज का वर्णन कर। मेरे प्रियो, मैं और आप जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं या कहीं खड़े होकर बातचीत करते हैं तो कितना अधिक उन बातों का हमारा ध्यान में रहता है जो परमेश्वर के वचन में। विश्वासी जीवन जो है, एक मसीह जीवन जो भी करना करता है वो ये सोचता है, क्या ये वचन के अनुसार है, क्या मैं जो काम कर रहा हूं वचन के अनुसार। बार बार हमें बार बार परमेश्वर के वचन में आना, बार बार परमेश्वर के वचन का आदर, बार बार परमेश्वर के वचन को देखना। हमारे अंदर निर्बलताएं हो सकती है, हमारे अंदर कमियां हो सकती है, हम चूक सकते हैं, लेकिन अगर कोई गलती होती है तो हमें माफी मांगनी, क्षमा मांगनी, प्रभु से भी और प्रभु के लोगों से भी। हमें निर्मल बात करना है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बात को करता है, तब आगे चल करते ये सब कुछ अब ये हुआ। लेकिन क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर पौलुस को देख रहा है। और तब 11 पद मुख्य पद है, बहुत सुंदर 11:23-11। परंतु उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, प्रभु ने अपने मालूम सदूत के द्वारा खड़े होकर प्रभु ने कहा, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है पौलुस को, साहस रख, जिस प्रकार तूने यरूशलेम में दृढ़ता पूर्वक मेरी साक्षी दी उसी प्रकार तुझे रोम में भी साक्षी देनी है। अब ये यरूशलेम से निकल करके इसको रोम में जाना है, ये सच वो तैयार है। पहले भी उसको हम देख रहे थे 22 अध्याय में, कुछ लोग कह रहे थे कि परमेश्वर का आत्मा में ऐसा कर रहा, लेकिन उसको बताया गया था तुझे रोम में जाना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं रोम में गया, रोम को मैं पकड़ा गया, पकड़ के उसको बंदी गृह में डाला, हाउस अरेस्ट किया, उस तरह से जेल में नहीं लेकिन एक घर में रख दिया गया उसको, 2 साल तक उस घर में रहा। जब 28 अध्याय में आते हैं हम उस बात को देखते हैं, लेकिन वहां पर भी उठ नहीं चुका है, वहां पर भी सुसमाचार प्रचार कर, वो कह रहा है साहस रख। कितना अधिक प्रोत्साहन के शब्द जब हमारे बच्चे थोड़े चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर एक कोई ऐसी चीज आती है, शायद डॉगी आ गया और उसने भौंक कर दिया, बच्चे डर जाते हैं, हम क्या कहते हैं, नहीं मत डरो, हिम्मत रखो, हिम्मत। परमेश्वर ऐसा, वह हमसे ज्यादा हमारी चिंता करता है और हर परिस्थिति में हमें साहस दिलाता है। उसको मालूम है कि पौलुस अकेला किस प्रकार के ऊपर, लोग कितना उसका विरोध कर रहे हैं, लोग कितना विद्रोह कर रहे हैं, लोग किस प्रकार से उसके लिए झूठा आलोचना लगा रहे हैं, सब कुछ रहे, परमेश्वर कह रहा है साहस। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर के वचन मेरे और आपके लिए उत्साह के कारण होता है। हम भी संसार में कई बार ऐसे सामना करते, आप भी करते, विश्वासी लोग करते हैं, लेकिन जब यह ऐसे वचन हमारे और आपके कानों में आते हैं हमें साहस मिलता है। परमेश्वर कह रहा है, वो जानता था पौलुस को साहस के लिए। मेरे प्रियो, कई बार हम विश्वासी को एक दूसरे को साहस दिलाने की जरूरत, अरे परेशान होते हैं, घबराई मत, हिम्मत रखिए, आशा रखिए, प्रभु में साथ है, प्रभु करेगा, ऐसा होगा। हमें नकारात्मक नहीं लेकिन सकारात्मक लोगों को प्रोत्साहित करना और आगे बढ़ाना, ये परमेश्वर के वचन का काम है। परमेश्वर तरह से करता है, परमेश्वर जानता था कि पौलुस ने ऐसा कहा है, पौलुस ने सेवक के साथ इतना क्रोध से बातें की, परमेश्वर जानता था उन सारी प्रथाएं, लेकिन परमेश्वर सारी प्रथाओं को देख रहा था क्यों पौलुस ने कहा ऐसा। और तब भी उसके बाद परमेश्वर कह रहा है, पौलुस तूने गलती करी, तूने ऐसा करा, तुझे ऐसा नहीं बोला, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि पौलुस खुद एहसास कर लिया कि उसने गलत कहा। लेकिन उसके बाद परमेश्वर उसको हिम्मत दिला रहा, वो कह रहा है साहस रख, जिस प्रकार तू यरूशलेम में दृढ़ता पूर्वक मेरी साक्षी, जानता है तूने हर विरोध में, हर ऐसी परिस्थिति में दृढ़ता के साथ मेरी साक्षी, विरोध हुआ है, लोगों ने मारा है, लोगों ने तुझे घसीटा है, सब कुछ करा है, लेकिन उसके बीच में तू मेरी साक्षी देता रहा। परमेश्वर की साक्षी देना ये आनंद की बात है, और जितना अधिक मैं और आप परमेश्वर की साक्षी देते हैं उतना अधिक मेरा और आपका विश्वास बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, आशा बढ़ती है, प्रभु का वचन हमारे जीवन को स्मरण आता है और लोग देखते हैं और उसके स्थिति बदल जाती है, लेकिन जितना आप चुपचाप रहेंगे, डर के रहेंगे, साक्षी नहीं देंगे, लोगों नहीं बताएंगे, उतना अधिक आपके अंदर भय प्रबल होता जाएगा और आप प्रभु के नाम से डरते 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 दबते चले। हाँ, ये भी बात सावधान रहना, मूर्खता के साथ बुद्धिमानता के साथ। कई बार हम दूसरों को कंडम करके अपनी साक्षी देते, तुम बेकार हो, तुम ये करते हो, हमने गलती करी, मैंने गलती करके सीखा। कई बार हम दूसरे मत के लोगों को नीचा कर देते हैं अपनी बातों में, नहीं ऐसा नहीं, बुद्धिमानता से किस प्रकार से लोगों को बोलना है ये बात को हमें समझना है। तब आगे चल करके देवता पूछा, उसी प्रकार तुझे रोम में भी साक्षी, रोम में जाना होगा, बंधुआ बनाया जाएगा, विरोध होगा, कट्टाई होगी, समस्या होगा, सब कुछ होगा, लेकिन तुझे वहां पर मेरी साक्षी देनी है, तू दृढ़ रहे। मेरे प्रियो, मुझे और आपको नहीं मानना, कल किस स्थान पे प्रभु मुझे और आपको जाना चाहते हैं, कहां पर रखना चाहते हैं। कितनी हम गवाहियों को सुनते हैं, कितनी ऐसी गवाहियां हमारे सामने थी जहां लोगों ने जा करके अपनी साक्षी को दिया है, और साक्षी को देने के दौरान उनकी कट्टाई हुई, लेकिन धीरे 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 प्रभु का काम हुआ। आज साम्यवाद ऐसे देश है जहां सुसमाचार नहीं था, लेकिन कैसे सुसमाचार पहुंच गए, अरेबियन कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, जहां सुसमाचार नहीं, लेकिन कैसे सुसमाचार पहुंच गए, कोई ना कोई था जो दृढ़ता के साथ, साहस के साथ। ऐसे गांव जहां सुसमाचार नहीं, आप भी जिस गांव से आते हैं, जिस स्थान से आते हैं, बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई लोग बहने लोग हैं जिनकी कहावाई मुझे सुल्तान में एक बहन ने, केवल एक बहन, पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़, वो बॉम्बे कुछ दिन उसका पति काम कर रहा था कई सालों में, और उसने वहां जाकर सुसमाचार सुन के विश्वास किया। जब वो वापिस आई तो उसने कुछ लोगों को बताना शुरू किया, और तब एक दिन उसके पास बाइबल थी, और बाइबल लेकर के वो एक परिवार में चली गई, क्योंकि वहां पर दो बच्चियां थी जो सिलाई करती थी। तो उसने उससे कहा, क्या मेरे इस बाइबल के लिए आप एक कवर सिल देंगे उन बच्चों के पास। तो उन बच्चों ने बाइबल देखी, और बाइबल देखने के बाद कहा कि अरे क्या है, बताइए बाइबल। तब इस बहन ने अपनी छोटी सी साक्षी उसको दी, और तब इनके घर में कुछ समस्या थी, वहां पर धीरे धीरे करते उस बहन के द्वारा वो लोग विश्वास में, और फिर संपर्क में, आज जो सुल्तानपुर में काम आरंभ हुआ है, मैं प्रभु धन्यवाद देना चाहता हूँ। 20 साल 25 साल पहले परमेश्वर ने सियोन को बहुत इस्तेमाल किया, कितने लोग आज वहां पर हैं और कितनी मंडलियां वहां पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि उस समय हम लोग गए थे, और जा करके उसी घर में जिस बच्चियों ने जिन्होंने सिला था, पूरा खानदान प्रभु में आया था, कितना समस्या उन्होंने सामना करा, कितना समस्या, परंतु वहां पर उस एक महिला का, अनपढ़ महिला का सुसमाचार सुल्तानपुर में फैला। मेरे प्रियो, आप और मैं प्रभु के गवाह, कहीं भी आपको रखा है जरूर प्रभु की गवाही। और तब वो आगे चलते, तब 12 पद से लेकर के हम आगे पढ़ते हैं किस प्रकार से पौलुस का के लिए अब उसको घात करने के लिए ये लोग परेशान हो गए। रोमी राज ने छोड़ दिया, लेकिन अब यहूदी लोग करने लगे। अब लिखा हुआ है उसको षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि उसकी हत्या कर दी जाए। अब ये सब कुछ करते बातचीत करते हुए षड्यंत्र कर रहे हैं, और 40 लोग थे, खासतौर से बड़ा समूह नहीं था, 40 लोग थे। लिखा हुआ है 13 पद में, षड्यंत्र रचने वाले 40 से अधिक थे, थोड़े लोग और थे। वे सब मुख्य याचकों और प्राचीनों के पास जाकर कहने लगे, हमने दृढ़ता पूर्वक शपथ खाई और ये ठान लिया है कि जब तक पौलुस को ना मार डाले तब तक कुछ ना चखेंगे। जब तक पौलुस को ना मार डाले हम कुछ नहीं खाएंगे, चखेंगे नहीं। इतना लेकिन क्या हुआ, तब क्या हुआ, जब ये बातचीत कर रहे थे, आपस में कर रहे थे, जांच पड़ताल होना था, 16 पद में, परंतु जब पौलुस के भांजे ने उनके घात में लगने की बात सुनी, पौलुस का भांजा, पौलुस की बहन का खुद, मैंने थोड़ा सा बताया था, भांजा ने बात सुनी तो किले में पहुंचा, और पहुंच करके भीतर जाकर पौलुस को सब बता दिया कि देख ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और किस प्रकार से तुझे घात करना चाहते, और इन्होंने कहा है जब तक हम पौलुस को मार ना ले हम खाना नहीं खाएंगे। इस भांजे ने सुना और आकर उसको बता दिया। तब पौलुस ने सूबेदार में से एक को अपने पास बुलाकर इस युवक को सेनापति के पास भेज ले जाओ, क्योंकि ये उसे कुछ बताना चाहता है। अब पौलुस ने क्या बुद्धिमानी करी, पौलुस डरा नहीं, घबराया नहीं, पौलुस ने उस बालक को उसके पास भेज दिया, ठीक है इसको ले जाओ, ये तुम्हें बताएगा क्या हुआ। और तब इस बालक ने सारी बातों को वहां वर्णन करा, सेनापति के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे अपने पास
बुलाकर निवेदन किया है इस युवक का तेरे पास पहुंचा दो। तब 19 पद में, तब सेनापति उसका हाथ पकड़कर उसे अलग ले गया और चुपचाप पूछने लगा, तू मुझे क्या बताना चाहता है? उसने कहा, यहूदी तुझसे ये मांग करने के लिए एकमत हो गए कि पौलुस को कल महासभा के सामने लाएं, मानो वे उसकी और भी अधिक जांच करना चाहते हैं, इसलिए तू उनकी मत सुनना, क्योंकि उनमें से 40 से अधिक मनुष्य उसकी घात करने के लिए लगे हैं, जिन्होंने एका करके शपथ खाई है, जब तक पौलुस को ना मार डालें, तब तक ना खाएंगे और ना पिएंगे, वे अभी भी तैयार हैं और तेरी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब सेनापति ने युवक को ये निर्देश देकर जाने दिया, किसी से मत कहना कि तूने ये बातें मुझे बताई। परमेश्वर कैसे सब कुछ को नियंत्रित कर रहा है? ये बात कहां तक पहुंच गई? सेनापति तक, जिसके हाथ में अधिकार था, वहां तक। और वो जानता था कि पौलुस ने कोई भी ऐसी बात नहीं, उसने कोई भी गलत। और तब उसके बाद आगे चल करके 22 पद से लेकर के 23 पद से लेकर के हम देखते हैं किस तरीके से पौलुस उन सारी चीजों के, फेलिक्स के जो वहां पर राजपाल है, राजपाल है, उसके पास पहुंचाया जाता है और उसके सामने सारी चीजों बात होती है, सारी बातें। उनसे मैं कुछ कुछ पद लूंगा। फिर 29 पद, फिर मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी व्यवस्था के कई प्रश्नों को लेकर उस पर अभियोग लगाया है। कई प्रश्नों को लेकर लोग व्यवस्था को लेकर के उस पर अभियोग लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, परंतु ऐसा कोई अभियोग नहीं जो मृत्यु दंड देने या बंदी बनाए जाने के योग्य है। वो कह रहा है फेलिक्स राजपाल है, वो कह रहा है इसको क्लोदियस उसको लेकर आया है, क्लोदियस ने उसको भिजवाया, क्लोदियस ने एक पत्र लिखा है, बहुत पत्र में पूरा विस्तार से लिखा है, लोग इसको मारना चाह रहे हैं, लोग इसको ऐसा करना चाह रहे हैं, मैं इसको तेरे पास भेज रहा हूँ, इसकी तू सुन लेना, सुन के जो फैसला करना तुझे फैसला करना है। और अब वो उसको इसके सुनता है और सुनने के बाद वो कहता है, जब मुझे ये बताया गया कि उस मनुष्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या लिखा है, षड्यंत्र रचा रहा है, पौलुस को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। हम कई उसी पाप में गिर जाते हैं, लोग कई बार हमारे लिए या हम दूसरों के लिए षड्यंत्र रचे, उनकी हानि पहुंचाते। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, कोई भी चीज ढपी नहीं जो खोली ना जाए। आप कितने मेरे प्रियो, हमेशा किसी की हानि करने के लिए हमें किसी प्रकार से कोई षड्यंत्र नहीं रचना, और जो लोग इस प्रकार से करते हैं वो बाद में खुद नुकसान करते हैं, बाद में खुद उससे पता नहीं चलता, उससे पता नहीं चलता, लेकिन बाद परिस्थिति खुद परमेश्वर को वचन कहते हमें इस बात में कह रहा है क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से करने के तैयार है। और तब उसके बाद उस सारी बातों को वर्णन करता है, तब कहता है 30 पद में, मुझे बताया गया उस मनुष्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो मैंने तुरंत तेरे पास भेज दिया, इस पर दोष लगाने वालों को भी आदेश दिया कि तेरे सामने इसके विरुद्ध अभियोग लगाएं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर ऐसा अभियोग नहीं लगा पाया। मैंने आपसे बोला था कि चार बातें बार बार कही जा रही, शुरू से लेकर अब तक, कि ये व्यवस्था को नहीं मानता, मंदिर को नहीं मानता, ये लोगों को वहां ले जाता है, लोगों को भड़काता है, और कोई भी ऐसी चीज। मैंने आरंभ में बोला, बार बार बोलता, पौलुस ने व्यवस्था का कहीं भी उल्लंघन नहीं किया, उसने व्यवस्था को लोगों को का सम्मान किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा, मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया हूं, लेकिन व्यवस्था को पूरा करने के लिए। ये लोग नहीं समझ पा रहे थे कि व्यवस्था की पूर्ति कहाँ है, ये लोग व्यवस्था की पूर्ति केवल नियमों का पालन, आज हमने 10 आज्ञाएं पढ़ी, केवल इन आज्ञाओं को जरूर, एक आज्ञा दूसरी आज्ञा से जुड़ी रहे, एक आज्ञा अगर तू कहता है तो चोरी ना करना, तो चोरी आदमी क्यों करता है, लालच के कारण, लालच के साथ जुड़ी, कहीं ना कहीं हर रीति से, और जब लालच करते हैं, चोरी करते हैं, तो परमेश्वर का जो परमेश्वर है उसका अपमान करते, उसका अनादर करते, उसके सही उपासना नहीं करते। पहली जो चार आज्ञा है सीधे परमेश्वर संबंध की, परमेश्वर के, लेकिन बाकी 6 आज्ञाएं वो समाज से संबंधित है। और सबसे पहली उन 6 आज्ञाओं में पहली आज्ञा जो है 5वीं आज्ञा, तू अपने माता पिता का सम्मान कर, तू अपने माता पिता का आज्ञा। और वो बच्चे जो अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं जानते, या ऐसी शिक्षा देते हैं कि माता पिता का सम्मान ना करो, उनकी चिंता ना करो, उनके साथ ना करो, उनकी देखभाल ना करो, वो गलत है वचन के अनुसार। और प्रभु यीशु मसीह ने बार बार दोहराया, तो वो 10 है, तो पौलुस ने कभी भी उन आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन एक बात जो बार बार कही है, बार बार उद्धार, छुटकारा, क्षमा, स्वर्ग में पहुंचना, सब कुछ व्यवस्था नियमों की पूर्ति के द्वारा नहीं है, क्योंकि हम व्यवस्था को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। केवल उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है जो प्रभु मेरे और आपके लिए इस संसार में मनुष्य बनकर आ गया। हम तो सब पापी थे और परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूर तो मृत्यु है। परमेश्वर का वचन कहता है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब पाप के कारण दंडित हो चुके थे, न्याय हमारे पर ठहराया जा चुका था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन। मेरे प्रियो, हमें बार बार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर देख करके उसके पीड़ा को देखना है, उसके बलिदान को देखना है, उसके दुख को देखना है, उसकी कीमत को देखना है जो उसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर चुका दी है। अगर उसने कीमत मेरे और आप पर चुका दी, व्यवस्था मेरा आपका छुटकारा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके द्वारा छुटकारा, और इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन पर, उस अनुग्रह पर विश्वास करना है जो यीशु मसीह ने। और पौलुस इसी बात को बार बार कहता है, ठीक है तुम धर्म को मानने वाले हो, तुम बहुत अधिक भाव समर्पित हो, ऐसा है वैसा है, तुम बहुत ज्यादा तुम्हारे अंदर जोश है, सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ उद्धार प्रभु यीशु मसीह। और मेरे प्रिय, आज यदि आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धार करता स्वीकार नहीं करा, तो आज भी अवसर है। परमेश्वर का वचन कहता है देखो आज ये उद्धार का दिन, देखो आज क्षमा, आपको नम्रता दीनता से अपने पापों से पश्चाताप करना है, मन फिराना है, यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके पीछे आना है, तब वो जीवन आपको मिलेगा। वो जीवन कौन सा है? मरने के बाद जीवन, यीशु मसीह ने मरने के बाद जीवन। प्रभु दया करे मेरे और आप पर, प्रभु दया करे। और यहाँ पर इस बात को कहता है तो सारी चीजें अंतिम बात, तब सैनिकों ने आगे दिख गई, पौलुस को रातों रात उस स्थान से अंतिपुरुष पहुंचा दिया, परंतु दूसरे दिन घुड़सवारों को उसके साथ आगे जाने के लिए छोड़कर वे किले लौट गए। अब पौलुस को सुरक्षा में आगे पहुंचाया गया। अब कल जब हम आने वाले देखेंगे, जब 24 अध्याय में जाएंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार से पौलुस का फिर भाषण, 24 अध्याय में 22 अध्याय में देखा था, इसमें फिर एक और भाषण का है, किस प्रकार से 24 अध्याय में आगे देखेंगे किस प्रकार से पौलुस भाषण देते हुए उस बात को वर्णित करता है जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित है। और यही हमारा आधार है, यही हमारा क्या मरने के बाद जीवन है, हाँ मरने वाले वो प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, पाया है, उसके पास एक आशा। 24 अध्याय में 23 अध्याय में खास बात यह है कि जो मैंने तीन बातों को आपके सामने रखा, पहली बात विवेक, मुझे और आपको सोचना है मेरा और आपका विवेक कैसा है, कौन से विवेक को काम, 24 अध्याय में भी एक विवेक को देखें, हमारा विवेक कैसा है, क्या शुद्ध विवेक है या अशुद्ध विवेक है, खरा विवेक है या अखरा विवेक, करप्टेड है, कैसा हमें देखना है, परमेश्वर से आना है और परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मेरे और आपके विवेक को सुने। दूसरी बात, हर परिस्थिति प्रभु अगर हमारे साथ है तो हमें प्रोत्साहित करना है, साहस साहस, वो हमेशा हिम्मत दिलाता है ताकि हम उसमें होकर आगे बढ़ जाए। और तीसरी बात, हम जैसे भी परिस्थिति में हो, चाहे कितना विरोध हो, कितना शत्रुता हो, कितना दुश्मन आक्रमण करे, कितना कुछ करे, लेकिन परमेश्वर हमारा बचाओ, वो हमें जिसने उसकी ओर देख दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना, परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें कि हम उस पर आइए।